ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय उदीरहे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सो हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम छठा स्कंद अध्याय क्रमांक 17 माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप। श्लोक क्रमांक 19। नैवात्मनः परश्चापि कर्तास्त्यामुखद्घोयो कर्तास्यात्मसुखदुःखयोः कर्तारं मन्यते अत्राज्ञः आत्मानं परमेव च नहीं एवा निसंदेह आत्मा न तो परह दूसरा शत्रु या मित्र च भी अपि निसंदेह कर्ता करने वाला स्यात् हो सकता है सुख दुख योह सुख तथा दुख का कर्तारं करने वाला मन्यते मानता है अत्र इस संबंध में अज्ञ मूर्ख आत्मानं अपने आप को परम अन्य एव निसंदेह च भी। अनुवाद तथा तात्पर्य शील एसी भक्ति वेदांत संस्वरूपात की अनुवाद। इस संसार में न तो स्वयं जीवात्मा और न पराये यथा मित्र तथा शत्रु ही भौतिक सुख तथा दुख के कारण है। केवल अज्ञानतावश जीवात्मा यह सोचता है कि वह तथा पराये लोग इसके कारण स्वरूप है। तात्पर्य इस श्लोक में अज्ञ शब्द महत्वपूर्ण है। इस संसार में सभी जीवात्माएं थोड़ी बहुत अज्ञ हैं। यह अज्ञानता भौतिक प्रकृति द्वारा प्रस्तुत तमोगुण में अत्यंत प्रबल रूप में चलती रहती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने चरित्र तथा आचरण द्वारा सतोगुण को प्राप्त करके अधोक्षज पद पर पहुंचे जहां से उसे अपनी तथा अन्यों की स्थिति का ज्ञान होने लगता है। प्रत्येक कार्य भगवान की अध्यक्षता में ही संपन्न होता है। जिस विधि से कर्म फल निश्चित होते हैं वह नियतम सदैव कार्यशील कहलाता है। ओम ज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ जो कथा चल रही है राजा चित्रकेतु, तो यहाँ चित्रकेतु क्या बता रहे हैं? इस संसार में न तो स्वयं जीवात्मा और न पराये मित्र तथा शत्रु ही भौतिक सुख तथा दुख के कारण है। केवल अज्ञानतावश जीवात्मा यह सोचता है कि वह तथा पराये लोग इसके कारण स्वरूप है। तो यहाँ जो है देखते हैं कि माता पार्वती के द्वारा ये जो है उनको श्राप ग्रस्त किए जाने के बाद उन्होंने उनसे क्षमा याचना की। फिर अभी चित्रकेतु जो है वो इस दुनिया की जो सच्चाई उसके बारे में बता रहे क्या है, इस दुनिया में किस प्रकार इस संसार में जीवात्मा जो है इस संसार में न तो स्वयं जीवात्मा न पराये मित्र तथा शत्रु ही भौतिक सुख तथा दुख का कारण है। तो आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे सुख और दुख का कारण कौन है। और यहाँ दूसरे पार्ट में ही बताया है केवल अज्ञातवश जीवात्मा यह सोचता है कि वह तथा पराये लोग उसके जो है कारण स्वरूप है। तो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि खास करके बद्ध होने के कारण हम दूसरों को दोष देते हैं। हम इस भौतिक जगत में भागवत में भी आप देखते कि दक्ष प्रजापति वो हर समय दोषी देखते थे, चाहे वो नारद मुनि हो या शिव जी हो। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि क्योंकि ये तमोगुण ऐसा है कि ज्ञान का जो विरुद्ध शब्द है वो है अज्ञ यानी अज्ञान। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे देय संसार दुख। तो इस भौतिक जगत में जब जीवात्मा परमात्मा को भूल जाता है और परमात्मा की नकल करते हेतु स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहता है तो वह अपने को मिथ्या ही भोगता मान बैठता है और परमात्मा से विलग हो जाता है। अतः माया पराशक्ति जीवात्मा के लिए अत्यंत कष्टप्रद है। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जितने भी प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बताते हैं कि ये प्रकृति के हम लोग प्रकृति के अधीन में है। यही रूपे ब्रह्मांड ये जो है 14 जगत में आप देखते हैं कि तीन गुणों का प्रभाव होता है सत्व गुण रजोगुण तमोगुण। तो प्रकृति में सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेके लगभग 10 बजे तक सत्व गुण का प्रभाव होता है, दोपहर से शाम तक जो है रजोगुण का प्रभाव होता है इस प्रकृति में, और संध्या के बाद में रात में वगैरह तमोगुण का प्रभाव होता है। तो भगवद गीता में भी कृष्ण भगवान क्या बताते हैं कारणम गुण संगस्य सद असद योनिसु जन्मसु 13.22 में भगवान क्या बताते हैं कारणम गुण संगस्य। तो हम जैसे हिंदी में कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो भौतिक जगत में जैसे जीवात्मा आ जाता है, अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले तारी बारे ना देखिन उपाय। तो जीवात्मा जो है अनादि काल से इस भौतिक जगत में वो क्या कर रहा है कि अलग अलग योनियों में भ्रमण कर रहा है। तो भगवान इसमें ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी क्या बताते हैं, यस इंद्र गोप अथवेन्द्रम अहो स्वकर्म बंधान रूप फलभाजनम कारणोति। तो क्या बताते हैं कि इंद्र गोप का मतलब एक छोटा सा कीड़ा से लेके ब्रह्मा तक। तो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति वो भोग के प्रवृत्ति में लगा है। तो रूपा जी भगवदगीता में एक तात्पर्य में बताते हैं, अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकाला जा सकता है। अथ वेद हमें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकालने का अवसर प्रदान करते हैं। तो अभी आपने अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ा है तो उसमें हम देखते हैं कि जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, उन्होंने पहले तो चैतन्य महाप्रभु की स्तुति की, नमो महावदन्याय। तो उसके बाद में उन्होंने क्या बताया, हालांकि वो बड़े मिनिस्टर्स थे, फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और बड़े विद्वान भी थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा, केने आमी केने आमाने जप तपत त्राय। तो कहने लगे कि हम ये नहीं जानते कि हम कौन है, दुनिया में सब लोग हमें तो कहते कि आप तो बड़े बड़े पंडित हैं, लेकिन हम वास्तविक ये जीना जीवन कैसे जीना है वो ही नहीं जानते। तो हमें मालूम होना चाहिए कि प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि किस प्रकार हमारा ज्ञान को माया वो ढक देती है। तो हमारी जो चेतना है वो पांच प्रकार की चेतना है। पहला है आच्छादित चेतना, फिर संकुचित, फिर मुकुलित, फिर विकसित, फिर पूर्ण विकसित। तो ये पांच प्रकार की हमारी चेतना है। तो 84 लाख योनि में तो हम देखते कि 80 लाख जो है जो ये है योनियां हैं। तो उनकी जो खास करके पेड़ पौधे हैं, लताएं हैं, तो इनकी चेतना क्या है, एक ही जगह रहते हैं। कवड़ उनकी चेतना क्या है कि आप उनको कुछ भी करो वो कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते, तो इसलिए उसको आच्छादित कहा जाता है, कवर्ड कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो माया भी इस भौतिक जगत में रूपा जी बताते हैं कि एक जीवात्मा को किस प्रकार वेदना देती है। वो दो प्रकार से वेदना देती है, एक है आवरणात्मिक और एक है प्रक्षेपात्मिक। आवरणात्मिक का मतलब है कि जैसे अंधकार हो गया तो प्रकाश चला जाता है। तो माया क्या करती है, हमें इस भौतिक जगत में हमारे ज्ञान को ढक देती है। तो इस भौतिक जगत में प्रभुपाद जी बताते हैं कि 99% लोग क्या है कि अज्ञानमी है। प्रक्षेपात्मिक का मतलब है कि बार बार उस व्यक्ति को उसी इसमें जो है माया क्या करती है, जैसे प्रक्षेपात्र आप लोगों ने सुना होगा, जैसे अस्त्रों को प्रक्षेपात्र कहा जाता है। जैसे एक सुअर है, प्रभुपाद जी सुअर का उदाहरण देते हैं, अभी जैसे सुअर है, सुअर टट्टी खाता है, लेकिन सुअर को उसमें बिल्कुल ब्रह्मानंद, यानी उसको इतना आनंद आता है टट्टी खाने में कि उसको लगता है अरे वाह कितना बढ़िया आइटम है। तो उसको ये मालूम नहीं है कि ये टट्टी है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आप सुअर को एक बढ़िया हलवा दे दो घी का बना हुआ और उसके ऊपर आप काजू बादाम जो भी है डाल दो, फिर भी वो कहेगा नहीं 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 ये बढ़िया आइटम, सबको यही खाना चाहिए, क्योंकि वो सुअर है। हाँ, उसकी चेतना जो है वो क्या है, उसको चेतना को आवरण यानी ढक दिया है। तो और एक ऐसे उदाहरण है, अगर आप देखते हैं कि गाय का गोबर होता है, दो तीन दिन के अंदर उसके अंदर बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं। तो उसमें से किसी कीड़े को निकाल दो, उसको कह दो कि मैंने आपको यहां से जीवन मुक्त कर दिया, हाँ ये पूरा आपको ये पृथ्वी आपके नाम पर कर देता हूं, आप ये गोबर में मत जाओ, उसको बाहर निकाल दो। थोड़े समय के बाद में वो क्या करेगा, फिर गोबर में जाएगा। तो आप देखते हैं कि कोई भी गली का कुत्ता होता है उसको एक पत्थर मारो भाग जाता है, कुछ समय के बाद में फिर वही आएगा। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस प्रकृति में भगवान ने, जैसे उद्धव गीता में कृष्ण भगवान अवधूत ब्राह्मण के 24 गुरुओं का उल्लेख देते हैं, 24, एक नहीं 24। तो प्रकृति में रहते हुए भी हम लोग जो है बहुत सारा सीख सकते हैं। लेकिन आज इस दुर्भाग्यवश मनुष्य एक ऐसा जीव है वो जो है सबसे बड़ा अज्ञानी है। आप कुछ प्रसाद फेंक दो, बंदर पहले उसको सूखेगा, वो सीधा मुंह में नहीं डालेगा। हमारे थाली में जो भी आता है हम लोग सीधा अंदर कर देते हैं कि नहीं, सोचते भी नहीं कि कितना पुराना होगा क्या होगा। तो आज के जमाने हम देखते हैं कि पशु से बेहतर जो है, सॉरी मनुष्य से बेहतर पशु है। तो आज लोगों को कब उठना है, कब खाना है, कब क्या करना है, ये कॉमन सेंस है ही नहीं। कॉमन सेंस इतना ये हो गया, दुर्लभ हो गया कि लोग कॉमन सेंस यूज करते ही नहीं, उसको ढक ही दिया है। तो फिर हमारी दूसरी चेतना है वो संकुचित, जैसे जितने भी बाकी जीव है कुत्ते गाय बिल्ली उनका जो है चेतना है उसको कहा जाता है संकुचित। फिर मुकुलित, मुकुलित का मतलब है जैसे एक बच्चा है, समझो आप कभी कहीं सफर करते हैं, 2-3 साल का बच्चा, अगर उसको आप टॉफी दिखा दो वो टॉफी आके लेगा नहीं, वो क्या करेगा अपने माता पिता के पास देखेगा, वो लोग कहेंगे चलो ले लो, तब लेगा, ठीक है। तो उसकी चेतना भी ये हो रही है, विकसित हो रही है। जैसे एक बच्चा यहाँ वो माइक में जाके बार बार चिल्लाता रहता है तो उसको लगता है चलो इसमें से कुछ मजा आता है कि नहीं। हाँ, तो उसकी चेतना क्या हो रही है, वो बडिंग यानी ऊपर आ रही है। फिर विकसित चेतना, अगर आप देखते कि 84 लाख योनि में, जैसे मैंने बताया अभी 4 लाख योनि मनुष्य की है, तो अभी जिसकी चेतना विकसित है तो ऐसे लोग भी है, बड़े बड़े इंजीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर्स वगैरह है, लेकिन उनको वास्तविक जो है शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्र का जो सच्चा ज्ञान होना चाहिए वो ये है नहीं। तो जब भी एक व्यक्ति यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं कि जब भी एक व्यक्ति एक गुरु का आश्रय लेता है और कृष्ण की भक्ति में लग जाता है तभी उसकी चेतना पूर्ण विकसित हो जाती है। जब भी हम देखते हैं कि हमारे हृदय में भगवान वो जो है चैत्य गुरु के रूप में निवास कर रहे, तो भगवान हमें हर घड़ी हर समय जो है हमें बता रहे कि क्या ठीक है क्या गलत है। तो इस प्रकार जब एक व्यक्ति पूर्ण भक्ति में लग जाता है तो भगवद गीता में भी कृष्ण भगवान क्या बताते हैं, पूर्ण विकसित चेतना का मतलब है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव सुपाके च पंडित समदर्शन। भक्तों में भी 3 कैटेगरी है, जो कनिष्ठ अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है। जो उत्तम अधिकारी क्या है कि वह सब जीवों में क्या देखेंगे, जैसे रांति देव है वो जो है सबको क्या है कि आत्मा के स्तर पर देखते हैं। तो इस प्रकार यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस भौतिक जगत में जितने भी जीव है वो अलग अलग स्तर पर क्या है प्रकृति के द्वारा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में वो क्या है आच्छादित है, बंधे हुए हैं। तो भगवद गीता में भी एक 16वें अध्याय में कृष्ण भगवान एक श्लोक में बताते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुर न शौचम नापि चाचर न सत्यम तेषु विद्यते। तो असुरी अज्ञानी जो होता है कृष्ण भगवान उसके बारे में क्या बताते हैं, जो असुरी अज्ञानी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, उनमें न तो पवित्रता न उचित आचरण न ही सत्य पाया जाता है। तो ये क्या है कि भौतिक जगत का जो है एक आवरण है तमोगुण का, तो उसमें से हमें क्या करना चाहिए ऊपर आने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवद गीता में कृष्ण भगवान ये भी बताते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहंकार विमुडात्मा कर्ता हम इति मान्यते। तो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तविक में प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो आप देखते हैं कि इस प्रकृति में सब कुछ जो है, अगर आप देखेंगे ये प्रकृति में सब कुछ जो है प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि हम ही चला रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अगर उसको ड्राइविंग करना है तो पिताजी को कहेगा मुझे ड्राइविंग करना है, तो पिताजी उसको सामने बोलेगा तुम स्टेयरिंग पकड़ो, लेकिन पिताजी खुद गाड़ी चलाएगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे छोटे बच्चे होते हैं माँ से हट करते हैं कि कहते हैं कि हमें भी रसोई बनानी है, तो माँ क्या करती है उनको रसोई की जो ये है वो छोटे छोटे ये होते हैं बर्तन वो ला के देती है, कहती है चलो तुम रसोई बनाओ। तो इस प्रकार इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जैसे मैंने हमें कुछ उदाहरण दिया, तो एक गरुड़ पुराण में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, तो उसके अंतर्गत पांच उदाहरण दिए हैं। तो उसमें बताया गया है पतंग मातंग कुरंग भृंग मीन हत पंच भीरेव पंच एकम प्रमाथि कतम न हन्यते यह सेवते पंचर भीरेव पंच। तो यहां वो ये बताया है कि पतंग मातंग कुरंग भृंग मीन ये पांच जो है जीव है वो है, एक कीड़ा होता है जो अग्नि में प्रवेश करता है, ठीक है, हाथी, और एक जो है हिरन, एक भवरा और एक मछली, इनका उदाहरण दिया है। अभी ये अपना एक इंद्रिय का जैसे रोड में लिखा रहता है नजर हटी तो हाँ दुर्घटना घटी, जो ड्राइविंग जानते हैं वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि नहीं। तो अभी आप देखते हैं कि भौतिक जगत में जितने भी जीव है उनके अंदर तो पूर्ण ज्ञान है नहीं, हाँ उनकी चेतना विकसित नहीं है। तो वर्षा के समय आप देखते हैं कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े आके वो ये लाइट को टकराते हैं, गांव में तो सीधा चूल्हे में चले जाते हैं या कहीं दीपक जलाया जाता है उस दीपक में आज आके वो उसको पटकते हैं, उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी क्या है वो आंखों के द्वारा जो भी देखता है प्रकाश उसमें वो चला जाता है और वो उसका मृत्यु का कारण हो जाता है, यह है पतंग। फिर हाथी माटंग, अगर आप देखते हैं किसी गांव में अगर हाथी आ जाए पूरा गांव का गांव जो है गांव छोड़ के भाग जाते हैं, एक हाथी के अंदर इतनी शक्ति प्रबल शक्ति होती है, हाथी को पकड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य हाथी को कैसे पकड़ता है, हाथी जो है हथनी से बड़ा प्रभावित हो जाता है, अगर हथनी को देख लेता है तो उसको जो है उसके अंदर काम वासना बिल्कुल भड़क जाती है और उसके पीछे वो भागने लगता है और आगे देखता नहीं कि गड्ढा है क्या है। तो गांव में क्या करते हैं जंगलों में जिस हाथी को पकड़ना है एक हथनी को उसके पास भेज देते हैं और एक बड़ा गड्ढा खोद देते हैं और उसको झाड़ी से ऐसे ऊपर ढक देते हैं, तो हथनी क्या करती है यू टर्न मार के जाती है, उसको मालूम है कि यहाँ गड्ढा है, लेकिन ये हाथी शॉर्टकट के चक्कर में उस गड्ढे में गिर जाता है, नीचे लगभग 10-20 फीट गड्ढा होता है, बेचारे को एक हफ्ते तक भोजन नहीं देते और उसकी ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर उसको क्या करते हैं जाके पैर में एक लोहे की सिलाई डाल देते हैं, चेन डाल देते हैं और उसको ऊपर ला के उसको एक पेड़ से बांध देते हैं और उस हाथी को जो है अंकुश से फिर कान में भेद देते हैं, इस प्रकार वो जो है गुलाम हो जाता है। फिर उससे वो पेड़ उठाने का टूटा जो है बड़े बड़े लकड़ी उठाने का बहुत सारा कार्य कर लेते हैं और कभी कभी आप देखते हैं कि हाथी को सिर्फ वो दो ही वो लोहे के सलाई रखते हैं उसके पैर में, लेकिन हाथी को क्या लगता है अभी मैं जिंदगी भर के लिए गुलाम हूँ और इस प्रकार हाथी हम देखते हैं कि जिंदगी भर वो गुलाम बनकर ही काम करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार एक व्यक्ति जो काम वासना के प्रभावित हो जाता है तो उस व्यक्ति को जिंदगी भर क्या करना होता है वही जीवन व्यतीत करना होता है। फिर एक हिरन, आप देखते हैं कि हिरन जो है उसको ये वाद्य उसको ये जो है डमरू वाद्य बहुत अच्छा लगता है और वो शिकारी उसको मालूम है कि हिरन को मारना इतना आसान नहीं है, तो शिकारी झाड़ी में छुपके क्या करता है कि वो एक जगह तबला बजाता रहता है, तो हिरन उस जगह आता है धीरे 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 और वो छुपके क्या करता है हिरन को मार डालता है तो उसकी मृत्यु के कारण हो जाती है। और भवरा, आप देखते हैं कि जो भवरा है भंवरा तो बांस के अंदर बड़े बड़े पेड़ के अंदर भी वो क्या कर देता है, छेद कर देता है। लेकिन जब ये भंवरा जो है कमल में, कमल की खुशबू से वो इतना पागल हो जाता है, तो रात शाम के समय कमल क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। तो लेकिन वो कमल को कभी भेद नहीं करता है, उसी में वो अपना सांस घुट के मर जाता है। अभी आप लगाओ। और अंत में मछली, मछली आप देखते हैं कि पानी में मछली के लिए सब कुछ व्यवस्था किया है, भगवान ने सब अरेंजमेंट किया है, लेकिन जो कुछ ऊपर से आता है वो कांटे में, उसको लगता है अरे कुछ बढ़िया चीज़ है, इसको खाना चाहिए। तो उसको खाने के चक्कर में मछली जो है वो उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ ये पांच जीवों का उदाहरण दिया है, लेकिन दूसरे भाग में क्या बताया है, एकम प्रमाति कथम न हन्यते, एक इंद्रिय का इस्तेमाल करने से इनका वध हो जाता है, लेकिन उसके बारे में क्या कहना, यह सेवते पंच फिर एव पंच। यहां मतलब है कि हमारा आदमी का उदाहरण दिया है। जब एक आदमी कुछ गलत काम करता है वो सारे अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करता है, जो भौतिक जो है भोग करता है वो उसका पावर आउटपुट जो है पांच गुना बढ़ जाता है कि नहीं, तो उसका क्या हालत होगा, तो उसका यहाँ उल्लेख दिया है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक अज्ञान, एक बच्चा अज्ञानी है, वो अग्नि को हाथ लगाता है, उसको मालूम नहीं अग्नि है जला देगी, तो आग उसको जला देती है, वो फिर वो दुख प्रकट करता है। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वो जानता है कि आग क्या है, किस प्रकार आग जला सकती है। तो इसी प्रकार इस भौतिक जगत में प्रभुपाद जी बताते हैं, अज्ञान ही हमारा बंधन का कारण है, और अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में लोग पाप के कार्य करते हैं, पाप कार्य करते हैं, और इस प्रकार क्या है कि हमारा ये इस भौतिक जगत में पाप के कारण, जैसे पराभव स्थावत अबोध जातो यावन जिज्ञासत आत्म तत्वम, ऋषभदेव अपने पुत्रों को बताते हैं कि इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति जिज्ञासा नहीं करते और कार्य में, भौतिक कार्य में लगे रहते, तो ऐसे व्यक्ति कर्म के बंधन में आ जाते, तो हर एक कर्म का जो है उसको फिर फल भुगतना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं तमोगुण के कारण इस भौतिक जगत में जितने भी बड़े बड़े नेता लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इस देश को चला रहे, लेकिन क्योंकि वो लोग अज्ञानी है, उनको शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, तो वो भी क्या करते हैं, पशु जैसा व्यवहार करते हैं, और वो खुद के लिए जीते हैं, और वो दूसरों के लिए सिर्फ दिखावा करते कि हम आपके लिए जी रहे। इस प्रकार क्या है कि सब लोग को वो अज्ञान में रखते हैं। जैसे एक बार एक कृपा जी के शिष्य एक बहुत अच्छी कथा बता रहे थे, एक ये था, एक गांव में एक धोबी था, तो उसके पास एक गधा था, उस गधे का नाम था सरगल सिंह। तो एक दिन क्या हो गया कि धोबी का गधा जो है सुबह सुबह उसका देहांत हो गया, तो धोबी बहुत जोर जोर से वो रो रहा था, तो जैसे दूध देने वाला दूध देने के लिए आया तो उसने देखा अरे धोबी रो रहा है, क्या हो गया, तो धोबी कहने लगा तो मेरा सबसे हित चिंतक, सबसे बड़ा हितैषी जो मेरा था वो गुजर गया, अब इस दुनिया में कुछ नहीं बचा, मैं कंगाल हो गया। तो अपनी छाती पीट पीट कर वो धोबी रो रहा था, तो दूध वाले ने जब भी देखा अरे कोई बड़ा व्यक्ति मर गया होगा, ये इतना क्रंदन कर रहा है, तो दूध वाला सब घर घर में जाके बता रहा था कि देखो सरगल सिंह मर गए, सरगल सिंह मर गए। तो सब लोगों को लग रहा था अरे सरगल सिंह कोई बड़े व्यक्ति मर गए क्या। तो इस प्रकार ये न्यूज जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो थे उनके पास वो न्यूज पहुंच गया, राजा जो मंत्री था, तो काफी लोगों ने सोचा अरे इतने बड़े ये जो व्यक्ति मर गए तो हमें मुंडन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुंडन। काफी लोगों ने मुंडन भी कर लिया, तो कहा कि चलो अभी जो है सब जगह मैसेज बता दो कि सरगल सिंह वो मर गए। तो क्या हो गया कि राजा के पास उस दिन दोपहर को राजा का नावी आया था, तो नाई ने राजा को बता दिया, राजा आप जानते हैं सरगल सिंह मर गया। तो राजा ने कहा अरे सरगल सिंह मैं तो किसी को पहचानता नहीं, ये सरगल सिंह कौन है। अरे राजा क्या बताऊं, इतना बड़ा आदमी था, सारे हमारे गांव के लोग, सारे देश के लोग उसके लिए अभी दुख प्रकट कर रहे। तो राजा भी सोच में पड़ गए, क्या हो रहा है मेरे राज्य में, ये कौन सरगल सिंह है। तो राजा कहने कहा, रुक अभी जाके मैं तलाशी करता हूँ। मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर को पूछा, अरे किस मूर्ख ने तुमको बताया सरगल सिंह मरा, बताओ। चलो अभी उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होने लग गया, तो उस दूध वाले ने बताया था, फिर दूध वाले को पकड़ो, इस प्रकार दूध वाले ने कहा कि मुझे तो ढोबी ने बताया। तो इस प्रकार पूरा गांव जो है वो ढोबी के घर गया। तो ढोबी वहां रोते ही बैठा था। तो फिर राजा ने उसको पूछा, अरे बताओ सरगल सिंह किधर है, दिखाओ। तो राजा को ढोबी जो है अपने घर के पीछे लेके गया जहां वो गधा मरा था। तो इस प्रकार जब राजा ने देखा, राजा ने भी सर के ऊपर अपना हाथ मार लिया। तो आज इस दुनिया में क्या है कि मीडिया का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है कि बस सब जो है मूर्ख ही मूर्ख बनते जा रहे। तो बृहदारण्यक उपनिषद में बताया है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो इसका मतलब है कि हमें अज्ञान से प्रकाश में जाना चाहिए और इस मृत्युमय जगत से जो है ऐसे जगत में जाना चाहिए जहां शाश्वत जीवन है। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं भगवद गीता में, बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर को के कर्म फलों के भोग करता है। अंततः काल के उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है तो ही वह अज्ञान और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ जो बताया है आज के इसमें, तो एक अवंती ब्राह्मण की कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, उद्धव गीता में। तो उसके अंतर्गत भी जो कृष्ण भगवान जो है एक बहुत अच्छी कथा बताते हैं कि किस प्रकार एक अवंती देश था। तो उसमें एक ब्राह्मण थे, वो किसान ब्राह्मण थे, लेकिन वो इतने कंजूस थे कि वो कोई पैसा खर्चा नहीं करते थे। तो उनके घर के परिवार के लोग, उनके जितने भी गांव के लोग उनसे परेशान थे क्योंकि ये कंजूस मक्की चूस आदमी था। तो उसने इतना धन कमा के रखा था और क्या हो गया कि समय के प्रभाव से धीरे धीरे उसका सब कुछ धन गवर्नमेंट वाले टैक्स में लेके गए, चोर कुछ चुरा के लेके गए, उसके घर के लोग कुछ धन चुरा के लेके गए, अभी कुछ बचा ही नहीं। तो उसने क्या सोचा, चलो साधु बन जाते हैं कि नहीं। तो इस भौतिक जगत में ऐसे भी लोग हैं, थोड़े लोग हैं, वो क्या करते हैं कि गर्मियों में साधु का कपड़ा डाल के वो ऋषिकेश हरिद्वार में जाके बैठ जाते हैं, लगभग 10-12 हजार का कमाई हो जाता है क्योंकि लोग वहाँ चार धाम यात्रा के लिए जाते हैं। वो कहते हैं कि गर्मियों में गांव में कुछ करना है ही नहीं, तो यहाँ वो 10-12 हजार का कमाई हो जाता है। तो ये अवंती ब्राह्मण है, हाँ उसने सोचा अभी कुछ बचा ही नहीं है, अभी तो मैं फटीचर हो गया, चलो हम क्या करते हैं कि हम अभी संन्यास ले लेते हैं। तो जब ही संन्यास लिया तो गांव के लोग कहने लगे, अरे देखो अभी ये कंगाल हो गया, अभी इसने संन्यास ले लिया, अरे इसको अभी क्या करो, इसकी अच्छी पिटाई करो, धुलाई करो। तो गांव के लोग उसको बहुत परेशान करते थे, इतने परेशान करते थे कि सोचो ही मत। आजकल इस दुनिया में हम देखते हैं कि थोड़े लोग जो हमारे ऊंचे जो भी होते हैं हमारे ऊपर पद में, हाँ वो भी सोचते हैं चलो इसको थोड़ा अच्छी तरह परेशान किया जाए, है कि नहीं, जो भी है। तो ये ब्राह्मण को इतना बड़ा ये हुआ लोगों के द्वारा, लोगों ने इतना उसका उसके ऊपर अत्याचार किया। तो उसने एक बहुत अच्छा श्लोक गाया, नायम जानो में सुख दुख हेतु न देव आत्मा गृह कर्म काल मन परम कारणम आमनंती संसार चक्रम परिवर्तयेद्य। अभी ये ब्राह्मण क्या बताते हैं आज के श्लोक में, यही बताया है ब्राह्मण ने, कहा न तो ये लोग मेरे सुख तथा दुख के कारण है, न ही देवता, न मेरा शरीर ग्रह या मेरे विगत कर्म या काल ही, प्रत्युत यह तो एकमात्र मन ही है जो सुख तथा दुख का कारण है, जो भौतिक जीवन को निरंतर जो है घुमाता रहता है। तो अभी हमें ये देखना चाहिए, कभी कभी आपको लगता है अरे हो सकता है मेरी साढ़ी साथी चल रही है, सबको मालूम है जिंदगी में कितने बार साढ़े साथी आता है, यमराज जी का सॉरी शनिदेव का, किसी को मालूम है कितने बार साढ़े साथी आती है, ऐसे बताया जाता है कि हमारे जीवन में चार बार ये आता है, 7.5 सौ साल की अवधि में जो भी है। तो लोगों को क्या लगता है, चलो कोई देवता, जैसे ये नंद महाराज थे, यशोदा ने तो कन्हैया को डांटा, अरे मूर्ख तुम नहीं देखते, तुमने इंद्र की पूजा को बंद करवा दिया, देखो अभी इंद्र कुपित हो गए। तो थोड़े लोगों को लगता है देवता, थोड़े लोगों को लगता है मेरा शरीर, अभी मेरा शरीर इतना मुझे दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है। किसी को लगता है ग्रह, मेरे 7.5 चल रही है, किसी को लगता है ये मेरा कर्म है, या कोई कहता है अरे मेरा समय अच्छा नहीं है। जैसे बलि महाराज और इंद्र का जब युद्ध हुआ था तो बलि महाराज ने अपने असुरों को क्या कहा, अरे देखो अभी हमारा समय बुरा चल रहा है, अभी ये कोरोना का समय चल रहा है कि नहीं। काफी लोगों को लगता है अभी कोरोना का समय चल रहा है, टाइम थोड़ा बुरा टाइम चल रहा है, आगे टाइम अच्छा आने वाला है, आगे ही समय अच्छा आने वाला है। तो ये ब्राह्मण कहते हैं ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ जो है अज्ञान है। तो हमें भी मालूम होना चाहिए, भगवद गीता में कृष्ण भगवान लिखते हैं 6 अध्याय में, मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्ष। तो मन हमारा क्या है, ये बंधन का और मोक्ष का कारण है। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोगों को हम कहते हैं अरे इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, कोई कहते हैं अरे मैंने इससे शादी करके मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा गलती किया, कोई कहता है अरे मेरे मुझे पता नहीं कौन सा पुत्र प्राप्त हो गया, इसने मेरा पूरा जीना ही हराम कर दिया। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग किसी ना किसी को कोसते रहते हैं, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार नीति शास्त्र में जो है एक उदाहरण दिया है कि हम किसी ना किसी को बिना मतलब का ही कोसते हैं। एक गांव में एक किसान परिवार था, तो उनके घर में एक छोटा बालक था, घर के अंदर रखवाली के लिए कुत्ता भी था। तो एक बार वो लोग खेत में गए थे, जब ही शाम को लौट के आए तो उन्होंने देखा कि घर के आंगन में खून ही खून है और कुत्ते के मुंह में भी खून लगा है। तो उनको डर लग गया, अरे ये कुत्ता बच्चे को तो खा तो नहीं गया। तो उन्होंने सोचा नहीं आगे पीछे, कुत्ते को मार डाला। फिर जब घर के अंदर गए, पालने में बच्चा खेल रहा था लेकिन नीचे सांप था। तो ऐसे तो सांप घर में आया था, तो सांप ने उस कुत्ते ने सांप को मार डाला था, लेकिन इन्होंने सोचा भी नहीं। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, गिव द डॉग बैड नेम एंड किल हिम। कभी कभी हम किसी को कुछ भी कहते, अरे तुमने ऐसे किया वैसे किया, चलो तुम्हारे लिए पनिशमेंट है। बाद में पता चलता है अरे उसने नहीं किया था। बिना जांच किए भौतिक जगत में हमारे अंदर एक ऐसी कमी है, किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचने से पहले कभी हमें सोचना चाहिए, हो सकता है इस व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ दुख सुख से व्यक्ति गुजर रहा होगा। एक बार एक व्यक्ति बता रहे थे, एक सच्ची घटना, ये न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति एक पार्क में आके बैठ गए, एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहे थे। तो एक व्यक्ति थे, उसके 3 बच्चे थे, बहुत परेशान कर रहे थे। तो एक व्यक्ति जो अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा, अरे भाई साहब आप अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते क्या? तो इस व्यक्ति ने कहा, भाई साहब माफ करना, अभी अभी मेरी पत्नी हॉस्पिटल में गुजर गई, अभी आप लगाओ उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन इस व्यक्ति को क्या लग रहा था, ये अपने बच्चों को संभाल नहीं सकता है क्या। तो भौतिक जगत में हमें मालूम होना चाहिए कि लोग तो एक दूसरों को कोसते हैं, कभी कभी हम लोग भगवान को भी कोसते हैं, लेकिन तो भागवतम में अहो विदा था, चित्रकेतु की जो पत्नी थी उसने तो भगवान को कहा, अरे भगवान आप कैसे भगवान है, आप नहीं जानते कि ये मेरा बच्चा अभी अनजान बच्चा है, छोटा है, अपने अभी इसने दुनिया ही देखा नहीं, आपने इसको मार डाला, बस आप भगवान है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस भौतिक जगत में जो भी हो रहा है एक हमारा कर्म का फल है। किम कर्म किम अकर्म येति कवयत्र मोहित। भगवद गीता में कृष्ण भगवान क्या बताते हैं, कर्म अकर्म विकर्म ये समझना, बड़े बड़े जो है दार्शनिक है कवि है वो भी समझ नहीं सकते कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण हो गया होगा। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति उसको जो है अपने कर्म फल से वो गुजरना हो रहा है। तो हमें मालूम होना चाहिए, चलो इसके पीछे हो सकता है कि भगवान का ही कुछ हाथ होगा। प्रूपा जी क्या बताते हैं यहां तात्पर्य में, इस भौतिक जगत में प्रूपा जी लिखते हैं कि सब कुछ भगवान के इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। प्रूपा जी क्या लिखते हैं कि यहां इस भौतिक जगत में जो है वो बता रहे हैं उसे क्या देखना चाहिए, भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो भागवतम में श्लोक आता है, कर्मणा दैवी नेत्रेन जंतुर्देह उपपद्यते। कर्मणा दैवी नेत्रेन का मतलब है कि जैसे आजकल वो सीसीटीवी वाला एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, ऊपर वाला देख रहा है, उनको अपना सीसीटीवी बेचना है, लेकिन ऊपर वाला कौन है ना, उसके 13 सीसीटीवी है, 13 कैमरा है, 13 उसके साक्षी है, कितना, एक दो नहीं है, 13। तो भागवतम में उल्लेख आता है 7वें स्कंद में, जैसे दिन में सूरज, रात में चंद्रमा, वायु, धरती, हाँ फिर ये अग्नि, चार दिशाएं, आत्मा, परमात्मा, यमराज, तो ऐसे कुल मिलाकर 13 साक्षी है। तो हम किससे कह सकते कि भाई हमने ये नहीं किया। तो हमारे जीवन में जो भी हो रहा है तो ये क्या है कि हमारे कार्य का कुछ फल है। अभी चित्रकेतु को यहाँ जो श्राप दिया जा रहा है, इसके पीछे भी कुछ भगवान की कोई इच्छा है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस भौतिक जगत में लोग ज्यादा बुद्धिमान नहीं है और उनके अज्ञान के कारण वो भौतिक अपने कार्यों से वो ज्यादा उसे भौतिक कार्य कर्म कांड से वो ज्यादा प्रभावित रहते हैं और इस प्रकार वो अपने इंद्रिय तृप्ति के द्वारा कभी स्वर्ग कभी इधर उधर, इस प्रकार वो क्या है कि अलग अलग योनि में भ्रमण करते रहते हैं। लेकिन एक जो सच्चा भक्त होता है वो क्या करता है, वो ही सोचता है कि चलो इसके पीछे कुछ भगवान का ही हाथ हो सकता है, वो है भगवान को श्रेय देगा या तो भगवान का हाथ देखेगा। जैसे भागवतम में 10वें स्कंद में एक श्लोक आता है, तत्तेनुकंपा सुसूक्ष्म मानो भुंजान एवात्मा कृतम विपाकम ऋद्वागवपुभिर्वदम नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदेश दया भक्त। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहते हुए तथा अपने मन वाणी तथा शरीर को आपको नमस्कार करते हुए सत्य निष्ठा से आपकी हेतु की कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि चलो जो भी हमारे जीवन में हो रहा है यहाँ भगवान की कुछ एक योजना होगी। तो भगवद गीता में भी कृष्ण भगवान क्या बताते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नाशाम्य आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भासुत। तो भगवान क्या बता रहे, मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो इस प्रकार कृपा जी बताते हैं कि जो इस्कॉन की संस्था क्या है कि हमारी संस्था इस भौतिक जगत में जो लोग अज्ञान में है, हमने ये संस्था बनाई है लोगों को अज्ञान से मुक्त करने के लिए। तो कृपा जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बच्चा, आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, वो डॉक्टर को देखते ही बच्चा चिल्लाने लगता है, लात मारने लगता है, वो डॉक्टर से क्रोधित हो जाता है। लेकिन वो बच्चा ये नहीं जानता है कि ये डॉक्टर मेरे शुभ चिंतक है, हितैषी है, वो नहीं जानता है, लेकिन वो अपना अच्छा देख रहा है। तो भौतिक जगत में भी हमें मालूम होना चाहिए हमारे गुरु या भगवान वो वैद्य है। जैसे एक वैद्य है वो जानता है कि हमारे लिए कौन सी दवा अच्छी है, वो वैद्य हमें बताएगा। तो भौतिक जगत भी, आज का जगत क्या है, रूपा जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, अंध पंगु न्याय, अलग अलग प्रकार का न्याय है। जैसे तांदुल वृक्ष का न्याय, इसका मतलब है कि लोगों को लगता है कि चावल में से वो जो है बिच्छू जन्म लेता है, या शाखा चंद्रमा न्याय, ऐसे बहुत न्याय है। तो एक न्याय है उसको बताते हैं अंध पंगु न्याय, इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति अंधा है और दूसरा व्यक्ति लंगड़ा है, लंगड़ा व्यक्ति बुद्धिमान है। हाँ, अंधा व्यक्ति वो हट्टा कट्टा मोटा है, ठीक है। अभी अंधा व्यक्ति अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकता, कहीं चल भी नहीं सकता, उसको किसी का सहारा चाहिए। लेकिन लंगड़ा व्यक्ति अगर अंधे के अगर कंधे पर बैठ जाता है, वो लंगड़े को क्या कर सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, लेफ्ट राइट स्ट्रेट, है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, अंधा चल सकता है किंतु देख नहीं सकता, और लंगड़ा चल नहीं सकता किंतु देख सकता है। अंध पंगु न्याय, अंधा व्यक्ति लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा सकता है और लंगड़ा आदमी उसे रास्ता बता सकता है। इस प्रकार वे सहयोग के काम चला लेते हैं, किंतु अलग अलग वे दोनों या चलने का काम ठीक से नहीं कर सकते। इसी प्रकार यह मनुष्य देह आध्यात्मिक जीवन एवं भौतिक सुविधाओं को व्यवस्थित रखने के लिए प्राप्त हुई है। पाश्चात्य देशों में तो विशेष रूप से भौतिक सुविधाएं उपलब्ध है, किंतु किसी को आध्यात्मिक उन्नति का कोई ज्ञान नहीं। अनेक लोग आध्यात्मिक ज्ञान के पीछे दीवाने हैं, किंतु बीच में अनेक ठग आकर उनका धन लेकर उन्हें उल्लू बनाकर चले जाते हैं। सौभाग्यवश कृष्ण भावनामृत आंदोलन भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं जो है प्रदान करता है। तो रूपा जी बताते हैं कि भारतीय लोग क्या है, चलो टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान है, हम किसी को आध्यात्मिक ज्ञान दे सकते हैं। तो जब भी प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे, लोग कह रहे थे प्रभुपाद जी आपको सूट बूट पैंट और ये फोर्क से चाकू से कैसे खाना वो सीखना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं वहाँ कुछ अपना परिवर्तन करने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो उनको हमारी संस्कृति सिखाने जा रहा हूँ, हाँ मैं उनका कुछ वहाँ चंदा इकट्ठा करने नहीं जा रहा हूँ। तो एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से प्रश्न किया था लंदन में, स्वामी जी आप लंदन क्यों आए। तो प्रभुपाद जी ने कहा आपने तो भारत देश को 200 साल लूटा, आपने ऐसे कहते कि भारत को मुगलों ने 800 साल लूटा, अंग्रेजों ने 200 साल लूटा। तो प्रभुपाद जी ने कहा देखो आपके जो यहाँ पहले जो लोग गए थे भारत को लूटने के लिए 200 साल उन्होंने सब कुछ लूट लिया, लेकिन एक बहुत कीमती चीज वो कोई नो हीरा नहीं है, एक ऐसी कीमती चीज है वो आप भूल गए थे, वो मैं ले आया हूँ। तो वो पत्रकार एक सोच में पड़ गया, अरे कौन सी चीज है हम लोग भूल गए थे। तो प्रभुपाद जी ने एक शिष्य कहा अरे इसको थोड़ा एक भगवद गीता दे दो। तो कहा कि देखो आप तो गर्म मसाले लेके पता नहीं सोना चांदी हीरे सब लेके आए, लेकिन असली माल ये है। जैसे एक इस्कॉन के भक्त थे बहुत पुराने, वो जब भी किताब वितरण करते थे वो कहते थे कि रावण डुप्लीकेट सीता लेके गया, आप असली गीता लेके जाओ। समझ में आ रहा है, रावण डुप्लीकेट सीता लेके गया, आप असली गीता लेके जाओ। तो वो एक ऐसे जोक मारते थे लोगों को। तो इस प्रकार यहाँ आज का जो ये था जो श्लोक, इसके अंतर्गत चित्रकेतु वो यही बता रहे कि किस प्रकार इस भौतिक जगत में अज्ञान के कारण हम क्या करते हैं, दूसरों को कोसते हैं, अपने को कोसते हैं, अपने भाग्य को अलग अलग चीज को कोसते रहते हैं। लेकिन जब भी हमें शास्त्रों का ज्ञान आता है और हमें पता चलता है चलो सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, जैसे ब्रजवासी कहते हैं आप ही की दुआ से सब मेरा ठीक चल रहा है, करते हो आप मेरा नाम हो रहा है। सो ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की